मुंबई को अंडरवर्ल्ड ने बार बार दहलाया, मगर एक हसीना थी जिसने अंडरवर्ल्ड को अपने इशारों पर नचाया। आखिर कैसे बन गई वो मुंबई की गॉड मदर? गोलियों से ना डरने वाली हसीना क्यों दिल से हार गई? हसीना पारकर के दिलचस्प पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन करें www.nowbharatgold.com पर।
तृणमूल के लिए जरूरी नहीं है कि वह टैगोर या नेताजी के बारे में कुछ कहे या, लेकिन बीजेपी के लिए इसलिए जरूरी है कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और बीजेपी के लोकल कोई नेता नहीं है जो कि बड़ी शख्सियत हो, जो स्टेचर में बड़े हों। तो यहां बीजेपी को जब देखते हैं तो उसको सिर्फ मोदी और अमित शाह ही दिखते हैं। बीजेपी कौन है? मोदी या अमित शाह। तो और तृणमूल इसको उनको आउटसाइडर के रूप में दिखाने में एक तरह से कामयाब हुई।
पश्चिम बंगाल में महापुरुषों को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच खींचतान पर यह कहना है नरेंद्र नागर का, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार, आज है शनिवार 23 जनवरी और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सरकार और किसानों के बीच बंद हुआ बातचीत का सिलसिला, अगली मीटिंग के लिए नहीं तय हुई कोई तारीख। अब गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे किसान। इस बीच पंजाब सरकार ने आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए और नौकरी देने का किया ऐलान। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने शूटर पकड़ने का किया दावा, ट्रैक्टर रैली में गोली चलाकर माहौल बिगाड़ने की थी साजिश। कथित शूटर ने दिल्ली पुलिस पर लगाए कई गंभीर आरोप, बोला ट्रैक्टर परेड में पुलिस की वर्दी पहन 60 युवकों को करना था बवाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी का बंगाल दौरा आज, पराक्रम दिवस समेत कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। इस बीच ममता बनर्जी ने विधायक वैशाली डालमिया को टीएमसी से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा जब साथ रहने की संभावनाएं खत्म हो जाएं तो तलाक के लिए तय समय सीमा का इंतजार करने की जरूरत नहीं, फैमिली कोर्ट को तलाक पर तुरंत फैसला लेने का दिया आदेश। देश में लगातार घट रहे कोरोना के एक्टिव केस, बीते 21 दिनों में कम हुए करीब 65,000 मरीज। उधर अमेरिका में नेशनल गार्ड के करीब 200 जवान हुए कोरोना पॉजिटिव, राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में थे मौजूद। अब खबरें काम की। कोरोना की वजह से सिविल सेवा परीक्षा न देने वाले कैंडिडेट्स को अतिरिक्त मौका नहीं देगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को सस्ते फ्लैट देगी हरियाणा सरकार, किश्तों में कर सकेंगे भुगतान, गुरुग्राम फरीदाबाद से शुरू होगी योजना। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है पश्चिम बंगाल में महापुरुषों को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच खींचतान। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नागर से। पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान का फोकस अब वहां के महापुरुषों पर आ टिका है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को बीजेपी पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है तो टीएमसी देश नायक दिवस के रूप में। नरेंद्र नागर जी, जिस तरह से दोनों दलों ने नेताजी को लेकर भव्य समारोह और कार्यक्रमों के आयोजन की घोषणा की है और उनकी विरासत को लेकर दोनों में जो जंग सी छिड़ गई है, इसे कैसे देखते हैं आप?
देखिए, नेताजी और रविन्द्रनाथ टैगोर या दूसरे जो बंगाल की शख्सियतें हैं जिनको एक तरह से बंगाली पूछते हैं और जो राष्ट्रीय शख्सियतें भी हैं, राष्ट्र में भी उनको काफी ऊंचा नाम है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन चूंकि अभी चुनाव आ रहा है इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और बीजेपी के लिए ज्यादा जरूरी है। तृणमूल के लिए जरूरी नहीं है कि वह टैगोर या नेताजी के बारे में कुछ कहे या, लेकिन बीजेपी के लिए इसलिए जरूरी है कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और बीजेपी के लोकल कोई नेता नहीं है जो कि बड़ी शख्सियत हो, जो स्टेचर में बड़े हों। तो यहां बीजेपी को जब देखते हैं तो उसको सिर्फ मोदी और अमित शाह ही दिखते हैं। बीजेपी कौन है? मोदी अमित शाह। तो और तृणमूल इसको उनको आउटसाइडर के रूप में दिखाने में एक तरह से कामयाब हुई है कि अगर बंगाल में बीजेपी आ गई तो मोदी और अमित शाह जैसे लोगों जो बाहरी लोग हैं जो बंगाल के नहीं है उनका यहाँ पर शासन हो जाएगा। और ये बहुत हद तक शासन तो भी है लेकिन अगर बीजेपी सरकार में आते तो निश्चित रूप से इनके नेता जो है वह अपने सारे आदेश वहीं से लेंगे। तो बीजेपी के लिए जरूरी है कि वह यह साबित करे कि हम बाहर के हैं, मोदी या अमित शाह या दूसरे नेता नड्डा वगैरह, लेकिन हम आपकी जो जो बड़े शख्सियतें हैं इनके इनका बड़ा सम्मान करते हैं और इनको बहुत आदर देते हैं। तो ये एक तो वजह ये है। दूसरी वजह यह है कि नेताजी चूंकि बीजेपी उन सभी लोगों को जो अपना क्या कहें कि सर उन सभी लोगों को ऊंचा करके दिखाने की कोशिश करती थी जो नेहरू के कंपटीशन में थे, लेकिन यहां पर वो काम इतना नहीं करा कि यहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, यहां तृणमूल की सरकार है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी जो भी कर रही है उसका तृणमूल पर कोई असर पड़ेगा। वह अपने आप को ज्यादा एक्सेप्टेबल करने की कोशिश कर रही है बंगालियों के लिए, बंगाली जनमानस के लिए, जो कि स्वाभाविक है, लेकिन उसका भी बहुत यहां मूल्य है ऐसा मुझे लगता नहीं, उसका बहुत फायदा होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है।
बाहरी पार्टी का जो तमगा टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया उस छवि को दूर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। खुद पीएम का आज कलकत्ता में समारोह में पहुंचना नेताजी के, तो ये बंगाल की जो जनता है वो इसे कैसे दे रही है? क्या वास्तव में उनके लिए मुद्दा भी है और क्या वो प्रभावित हो रहे हैं?
देखिए बंगाल का जो वोटर है बहुत ही ज्यादा पोलराइज्ड है पहले से, और बीजेपी ये जानती है कि बीजेपी का जो सपोर्ट है जो हम चाहें लास्ट इलेक्शन में देखा वह बेसिकली बीजेपी का वोट पॉजिटिव वोट नहीं था, वह एंटी तृणमूल वोट था और लेफ्ट और कांग्रेस से आया था। बीजेपी का जो पॉजिटिव वोट है वो 17-20% है जो हर हालत में बीजेपी को मिल सकता था। ये जो 20% एक्स्ट्रा वोट आया ये एंटी आया है, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि जो 20% वोट एक्स्ट्रा मिला बीजेपी को वो एक सामान्य बंगाली का था जिसने सिर्फ इसलिए वोट दिया कि वो तृणमूल को वोट नहीं देना चाहता था और वो जानता था कि लेफ्ट और कांग्रेस तृणमूल को हराने में कामयाब नहीं है, तो हमने बीजेपी को वोट दे दिया। तो बीजेपी को अपने को यहां एस्टेब्लिश करने के लिए काफी काम करना है और उसी काम के सिलसिले में कि यह जो न्यूट्रल वोट जो मेरे पास आया है वो पॉजिटिव वोट बने, और पॉजिटिव वोट तभी बनेगा जब बंगाल की बीजेपी को उतना ही क्षेत्रीय बंगाली माना जाए जितना कि तृणमूल है। तृणमूल तो हम मानते हैं कि रीजनल पार्टी है, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, तो वह बंगाली बंगाल की इश्यू को उतनी तेजी के साथ नहीं उठा पाएगी जितने की तृणमूल उठाती है, ये नॉर्मली मानसिकता है। इसी को दूर करने के लिए ये कोशिश कर रहे कि हम बंगाल के उतने ही करीब हैं जितने की बाकी तृणमूल है या दूसरी पार्टियां हैं, इसलिए हमें अपनाइए, अपना समझ के अपनाइए और हम आपके जो ये प्रतिमाएं हैं जो बड़ी शख्सियतें हैं वो हमारे लिए उतने ही करीब है। तो बेसिकली अपने आप को अपना बंगालीकरण करने के लिए ये मोदी और अमित शाह या बीजेपी वाले ये काम कर रहे हैं।
मोदी की बंगाल यात्रा ऐसे समय में है जब बंगाल में चुनावी घमासान अपने पीक पर है, क्या उनके जाने से ये राजनीति वहां और गर्माएगी?
राजनीति को जितना गर्माना था वो तो गर्मा ही चुकी है और कल क्योंकि पॉलिटिकल रैली नहीं है, एक सरकारी समारोह ही है तरह के, इसलिए उस तरह से इसका वो असर नहीं होगा। और नेताजी का जो एक तरह से प्रतिष्ठित हो चुके हैं और नेताजी के बारे में कोई नई बात न तो आनी है न आएगी। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि तृणमूल जो है एंटी नेताजी हैं, आप कभी कुछ हासिल तभी करते हैं जब दूसरा उसकी एंटी हो। नेहरू वर्सेस नेताजी, नेहरू वर्सेस पटेल जैसे गुजरात में होता है, जैसे गुजरात में आप पटेल को उठाते हैं तो आपको लाभ मिलता है क्योंकि वहां आपकी एंटी कांग्रेस है और कांग्रेस चूंकि नेहरू के परिवार के साथ जुड़ी हुई है। यहां पर चूंकि वो चीज नहीं है, यहां ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार है और उनसे कहा जाए कि देखो नेहरू ने ऐसा किया था, यहां तृणमूल की सरकार है। तृणमूल कांग्रेस नाम भले है लेकिन तृणमूल कांग्रेस की छवि एक बिल्कुल ही अलग है, उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वह एक ऐसी पार्टी सरकार है जो जैसे मां बाप की मानो गांवों की किसानों की गरीबों की का लिखान करती है, हालांकि वो करप्शन वगैरह के कारण बदनाम हुई है ममता बनर्जी की जो इमेज है उसका ऐसा कुछ नहीं है कि वो एंटी नेताजी है और ये प्रो नेताजी होकर उसका फायदा उठा लेंगे, तो उस तरह से उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना है
जी। लेकिन ये जो ममता सरकार को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं उसे कैसे देखते हैं? एक और मंत्री राजीव बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया, कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। अब तक टीएमसी के 16 विधायक पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, तो लगातार जो ये सिलसिला चल रहा है इसके पीछे क्या वजह है?
देखिए, चुनाव का समय आ रहा है, कई लोगों को टिकट मिलेंगे, कई लोगों को नहीं मिलेंगे। तो मैं इसको ऐसे समझता हूं कि तीन तरह के लोग जो हैं वह टीएमसी छोड़ रहे हैं। एक वे लोग हैं जो उन कंस्टिट्यूएंसी से हैं जिस कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी ने पिछले चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें लग रहा है कि इस बार हम हार सकते हैं, ऐसे लोग जा रहे हैं। जो हो सकता है, कई लोग ऐसे हैं जो पहले ही कांग्रेस से या सीपीएम साइड से, यानी पहले ही दल बदलू से, ऐसे लोग निकल रहे हैं। दूसरे लोग वो हो रहे हैं जिनको विनिंग सीट पर हैं, जैसे कि राजीव बनर्जी, ये पिछली बार मंत्री भी थे और जिस सीट से ये विधायक थे उस सीट पर तृणमूल को काफी अच्छी बढ़त थी, तो ऐसा नहीं है कि वो हार जाएंगे, ऐसा नहीं था। लेकिन ये 2011 से मंत्री थे, 2.5 साल पहले इनका मंत्रालय बदल दिया गया और इन्होंने खुद आज कहा भी कि मुझे कम महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया। तो भाई, निश्चित रूप से किसी पार्टी में जब मंत्रालय बदले जाते हैं तो कोई नाराज हो जाते हैं, कुछ खुश होते हैं। और आपको बता दूं, उनका मंत्रालय बदल के शुभेंदु अधिकारी को ही दिया गया था, जिनके साथ आज जारी की बात कर रहे हैं। तो भाई, शुभेंदु अधिकारी उस समय ज्यादा पावरफुल थे, तो इनका मंत्रालय उनको दे दिया गया। इनको और ये बात कर रहे हैं कि मनोज लोगों के लिए काम करना चाहते, उनको ट्राइबल अफेयर्स का मंत्रालय दिया गया, आदिवासियों को और बैकवर्ड क्लासेस का मंत्रालय दिया गया। तो अगर आपको जनता के लिए काम करना है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है आदिवासी और पिछड़े लोगों को काम करें। तो मुख्य मुद्दा यह है कि आपका पावर कम किया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं, उनके आने के बाद और प्रशांत किशोर के कहने पर कई लोगों को, जिनको उनको लगता है कि ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है या फिर राज्य की सीट बदली जा सकती है, तो उस कारण से भी ऐसे लोग छोड़ के जा रहे हैं जिनका पावर कम किया जा रहा है नए समीकरण में। और तीसरे लोग वो हैं जो कि उनको लग रहा है कि अब उनको टिकट ही नहीं मिलेगा, तो जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो कोशिश करेंगे, अच्छा ठीक है टिकट न मिले चलो उधर चले जाओ। तो तीन तरह के लोग हैं जो जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से 211 अगर आपके विधायक थे उस समय, बढ़ के 220 ऊपर हो गए थे, उसमें से अगर 15-16 चले जाए, बल्कि मेरे ख्याल तो जैसे ही टिकट डिक्लेयर होगा ना उसके और कुछ लोग चले जाएंगे, तो उससे मुझे बहुत बड़ा एक्सोडस नहीं है। आपको एक चीज बता दूं छोटी सी कि शुभेंदु अधिकारी अपने साथ केवल 2 MLA ले गए हैं, सिर्फ 2। इसका मतलब जिस मिदनापुर सीट के, वो मिदनापुर इलाके के जिले के हैं, वहां के बाकी जो 16-18 MLA हैं उनको ऐसा नहीं लग रहा है शुभेंदु जीत रहे हैं। अगर जीत रहे होते तो वो भी चले गए होते। तो एक इतना बड़ा नेता जो अपने आपको ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर का नेता बताता है, वह अपने साथ अपने इलाके के केवल 2 MLA ले जा पा रहा है। इसी हिसाब समझ लीजिए कि स्थानीय लेवल पे माहौल कैसा है। और एबीपी का जो पोल आया था उससे भी यह धारणा पुष्ट होती है कि तृणमूल का सपोर्ट कम नहीं हुआ है, हुआ 40+ 43-44% भी आ रहा। और चूंकि ममता और तृणमूल एक ही है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे 2-4 लोगों के जाने से बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा।
नीरेंद्र नागर जी, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म, 1920 में वायु परिवहन और वायु डाक सेवा की शुरुआत, 1926 में बाल ठाकरे का जन्म, 1976 में गौतम बुद्ध के लापता शहर कपिल वस्तु को खुदाई के बाद खोज निकाला गया, 2009 में फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में स्मोकिंग सीन दिखाने पर लगी पाबंदी समाप्त। बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत में मौसम ने फिर ली करवट, दिल्ली यूपी और पंजाब में बढ़ी ठंड, नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने से बारिश के भी आसार, पहाड़ी राज्यों में जारी रहेगा बर्फबारी का सिलसिला। अब बारी सुविचार की। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, अगर आप सच बोलेंगे तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट। जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।